नमस्कार। आज हम एक बहुत खास पुस्तक पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं, नवयुग का मत्स्यावतार। ये पुस्तक, जैसा कि हम जानते हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने लिखी थी। 1988 से 90 के बीच का जो समय था, तब उन्होंने एक पूरी श्रृंखला रची थी, क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला। ये उसी का एक हिस्सा है
जी। और ये सिर्फ एक पुस्तकमाला नहीं थी, पूज्य गुरुदेव ने तो वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माताजी से ये कहा भी था कि ये साहित्य उनका ज्ञान शरीर है जो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। और उन्होंने बहुत आग्रह किया था कि ये ज्ञान शरीर, ये विचार जन जन तक पहुंचने ही चाहिए।
हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इसे अपना ज्ञान शरीर कहा। तो चलिए आज इसी ज्ञान शरीर के एक अहम अंग को समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नवयुग का मत्स्यावतार ये चेतना के विस्तार और नए युग में दैवीय भूमिका पर बात करती है।
हाँ,
तो इसकी शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा से होती है ना। ब्रह्मा जी और उनकी वो चुल्लू भर जल में आई एक नन्ही सी मछली।
जी वही कथा। वो मछली फिर आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगती है। पहले कमंडल छोटा पड़ जाता है, फिर तालाब, फिर नदी, और आखिर में उसे समुद्र में ही जगह मिल पाती है।
ये जो असाधारण विस्तार है, ये कहानी क्या संकेत दे रही है, क्या मतलब है इसका?
देखिए, ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली रूपक है। कथा में वो मछली बाद में बताती है कि वो स्वयं परब्रह्म है, यानी सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति जो व्यवस्था बनाने के लिए अवतरित हुई है। तो ये रूपक समझाता है कि जब किसी महान उद्देश्य के पीछे एक दैवीय संकल्प होता है ना, एक योजना होती है, तो एक छोटी सी दिखने वाली शुरुआत भी, मतलब अकल्पनीय रूप से फैल सकती है, विराट बन सकती है।
अच्छा।
हाँ, ये चेतना का एक स्वाभाविक गुण है, विस्तार पाना, जैसे एक बीज से पूरा जंगल बन जाता है। दैवीय प्रेरणा उसे बस गति दे देती है।
और यहीं पर पूज्य गुरुदेव इस प्राचीन कथा को आज के हमारे समय से जोड़ते हैं।
बिल्कुल, वो कहते हैं कि जो विचार क्रांति और नव सृजन का अभियान उन्होंने चलाया, जैसे अखंड ज्योति पत्रिका का लाखों घरों तक पहुंचना, करीब 3,000 पुस्तकों का लिखा जाना।
हाँ, और देश विदेश में वो हजारों प्रज्ञापीठ जो ज्ञान केंद्र बने।
जी, ये सब पूज्य गुरुदेव के अनुसार आज के युग का मत्स्यावतार है, या इसे वो प्रज्ञावतार भी कहते हैं।
प्रज्ञावतार मतलब ज्ञान और विवेक की शक्ति का अवतरण, है ना?
हाँ, सही पकड़ा आपने। प्रज्ञा यानी बुद्धि और विवेक का सामूहिक जागरण। और वो ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या इतना बड़ा काम इतने थोड़े समय में, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की मानवीय कोशिशों से संभव था?
सोचने वाली बात तो है।
उनका जवाब एकदम साफ है, नहीं। वो मानते हैं कि इन सभी उपलब्धियों के पीछे केवल सीमित मानवीय पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि एक अदृश्य चेतना की प्रेरणा है, उसकी योजना है, उसकी शक्ति काम कर रही है। मिशन की जो ये आश्चर्यजनक सफलताएं हैं, इसका जो विस्तार है, ये उसी अदृश्य दैवीय शक्ति का प्रमाण है। इसे केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता।
तो अगर ये सब एक बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा है, तो फिर इसमें हम जैसे साधारण लोगों की क्या भूमिका हुई? क्या हमें बस देखते रहना है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यही तो पुस्तक का सबसे अहम संदेश आता है। जैसे मत्स्यावतार का लक्ष्य क्या था? श्रेष्ठता का, अच्छाई का विस्तार हर जगह। वैसे ही नवयुग लाने के लिए, यानी सतयुग जैसी एक आदर्श स्थिति बनाने के लिए, जरूरी है कि समाज में सज्जनता, अच्छे विचार, सत्प्रवृत्तियां, इनका बहुमत हो, ये ज्यादा फैले।
अच्छा, यानी अच्छाई को फैलाना है।
हाँ, और पुस्तक सीधा आह्वान करती है, एक तरह से पुकार है, 1 से 5, 5 से 25, मतलब हर व्यक्ति जो इस नई चेतना से जुड़ा है, वो इसे आगे फैलाए, कम से कम 5 लोगों तक, फिर वो 5 अगले 25 तक, एक श्रृंखला बने।
तो ये एक जिम्मेदारी भी हुई हर व्यक्ति की, पर इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, मतलब व्यवहारिक रूप में क्या करें? सिर्फ इच्छा से तो काम नहीं चलेगा।
पुरुषार्थ यानी कोशिश, मेहनत भी चाहिए, और पुस्तक इसके लिए कई व्यवहारिक तरीके सुझाती हैं, जैसे सामूहिक सत्संग करें जहां अच्छे विचारों पर बात हो, दीप यज्ञ करें जो ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, स्वाध्याय मंडल बनाएं जहां लोग मिलकर पढ़ें, समझें, चर्चा करें।
और वो समयदान और अंशदान की बात भी है शायद?
जी हाँ, समयदान यानी अपने समय का एक नियमित हिस्सा इस अच्छे काम के लिए देना, और अंशदान मतलब अपनी कमाई का, अपने संसाधनों का एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से देना। फिर ज्ञान रथ जैसे माध्यम भी हैं, यानी चलती फिरती लाइब्रेरी जो विचारों को घर घर तक पहुंचाए।
ये सब तो हुए बाहरी साधन, बाहरी प्रयास। क्या कुछ अंदरूनी तौर पर भी करने की जरूरत है?
बिल्कुल, और शायद सबसे महत्वपूर्ण वही है। पूज्य गुरुदेव इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि व्यक्ति अपने अंतःकरण से जुड़े, अपनी आत्मा में, अपनी भीतरी चेतना में जो ईश्वरीय अंश है उससे कनेक्शन बनाए। वो कहते हैं कि जैसे लोहा पारस के संपर्क में आता है तो सोना बन जाता है।
हाँ,
वैसे ही जब व्यक्ति उस ऊंची दैवीय प्रेरणा से जुड़ता है तो उसमें अपने आप स्वतः ही जागो और जगाओ, उठो और उठाओ की भावना जाग जाती है। वो खुद भी प्रेरित होता है और दूसरों को भी उठाने जगाने का काम करने लगता है, युग परिवर्तन में सक्रिय हो जाता है।
अच्छा, और इसके लिए निरंतर प्रेरणा बनाए रखना भी जरूरी होगा?
हाँ, इसीलिए नियमित रूप से प्रेरणा स्रोतों से जुड़ना, जैसे शांति कुंज के सत्रों में जाना या स्वाध्याय करना, इससे अपनी प्राण चेतना, अपनी जीवन ऊर्जा को प्रखर बनाए रखने का महत्व भी बताया गया है।
तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो नवयुग का मत्स्यावतार हमें ये विश्वास दिलाती है कि युग परिवर्तन जैसा विशाल काम, जो पहली नज़र में असंभव सा लगता है, वो दैवीय चेतना के मार्गदर्शन और हम सबके मिले जुले समर्पित प्रयासों से बिल्कुल संभव है।
जी बिल्कुल, मुख्य संदेश यही है, श्रेष्ठ का निरंतर विस्तार, अच्छाई को फैलते जाना है।
सही कहा।
और ये पुस्तक जागते सचेत एक गहरा सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाती है कि इस विराट दैवीय योजना में हम अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं और सीमाओं के साथ अपना सबसे अच्छा योगदान कैसे दे सकते हैं, कैसे हर व्यक्ति खुद को उस अदृश्य चेतना से जुड़े और इस महान बदलाव के अभियान का एक सक्रिय सार्थक हिस्सा बने, ये हम सबके लिए सोचने का विषय है।